of Thales, Volume 8. عشان نشوف جلدتين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة الحاقہ کی تفسیر آج ہم شروع کر رہے ہیں پڑھنی. پچھلی کلاس میں ہم نے سورة القلم کی تفسیر مکمل پڑھ لی تھی. اگر کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی چیز رہ گئی ہو پیچھے کے ٹاپکس کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. سورة الحاقہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے, اور اس کے اندر 52 آیتیں ہیں, 52. دو رکوع ہیں ٹوٹل اس کے اندر. مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ عموماً چھوٹی صورتیں ہوتی تھیں, اور ان کے اندر قیامت کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ مکہ مکرمہ کی زندگی دین اسلام کا ابتدائی دور تھا, اور اس ابتدائی دور میں اللہ رب العزت جو ایمان والے لوگ تھے تو ان کے ایمان کو انتہائی مضبوط سے مضبوط ترین بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت جو ہے نا وہ اعمال اتنے زیادہ نہیں تھے. یعنی 5 نمازیں اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھیں, اور زکوٰۃ کے احکامات نہیں آئے تھے, اور بہت ساری دوسری جو تفصیلات تھیں اعمال والی تفصیلات جو ہیں وہ نہیں آئی تھیں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا, اس وقت چند نمازیں تو ہوتی تھیں. تہجد کی نماز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فرض تھی, اور شروع میں عام مسلمانوں کے اوپر بھی تہجد کی نماز فرض تھی. لیکن اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا, اس کے علاوہ ان کو بیسیکلی جو مشرکین مکہ تھے ان کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, ان کی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تکلیفوں اور اذیتوں اور مشکلات کو برداشت کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ سب مکہ مکرمہ کی زندگی کی خصوصیات تھیں. ٹھیک ہے, یہ تکالیف, آزمائشیں, پریشانیاں انتہائی درجے کا ان لوگوں کو یعنی قربانیاں دینی پڑتی تھیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا بہت پکا ایمان بنا رہے تھے, قیامت کے اوپر ایمان, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان, اور ہر طرح کے جو جھوٹے خدا ہوتے ہیں ان سے ہٹ کٹ کر کے ایک واحد خدا کی طرف اپنی تمام امیدیں اور تمام اپنی جو نگاہیں ہیں ان کو لگا دینے کا, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی نگاہ لگا دینے کا. تو اس وجہ سے جو اس دور کے اندر صورتیں اللہ تعالیٰ نے اور آیتیں نازل فرمائیں تو ان کے اندر ایمانی مضامین جو تھے وہ بہت زیادہ تھے. اس کے برعکس جو فقہی مضامین ہیں اور احکامات وغیرہ جو ہیں تو وہ مدینہ منورہ کی زندگی میں نازل ہونے شروع ہوئے. ٹھیک ہے, تو سورہ حاقہ بھی اسی دور کی ایک سورہ ہے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بہت ساری باتیں فرمائی ہیں, اور اس میں جو پچھلی قومیں گزری ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تو ان کے تذکرے سے سورت کو یعنی اس ان کا تذکرہ سورت کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا. شروع کی جو اس کی آیات ہیں وہ تو قیامت ہی کے بارے میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ. تو سب سے پہلے نا ہم اس سورت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی ایکسپلینیشنز کے ساتھ, یعنی لفظی ترجمہ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ معرف القرآن سے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی فالو کریں, اور اگر ہم کسی لفظ کا آپ کو لفظی ترجمہ تھوڑا اور تفصیل سے بتائیں تو اس کو بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. اپنے پاس کاپی اور پینسل ہونی لازمی ہے. اپنی کاپی اگر آپ نے کوئی ایسی بنائی ہوئی ہے اس کلاس کے لیے تو اس کے اوپر لکھ لیں, یا نہیں تو جو کتاب ہے کتاب کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کتاب کے اوپر لکھنا جو ہے یہ بے ادبی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. علم کی باتیں جو لیکچر سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں ان کو کتاب کے اوپر لکھنا یہ کتاب کی بے ادبی نہیں ہوتی. کتاب کی بے ادبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر فضول باتیں لکھی جائیں, رائٹ, یا اس کے اوپر جو ہے وہ بیکار کے نقش و نگار بنا دیے جائیں, یہ کتاب کی بے ادبی ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ وہ بال پوائنٹ سے جو ہے وہ پھول پتے بوٹیاں وغیرہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علم کی کتاب کے اوپر, خصوصاً تفسیر کی کتاب کے اوپر. تو یہ کتاب کی بے ادبی ہے, اوکے. لیکن علم کی بات لکھنا تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو, آپ کو بعد میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے ایک دفعہ پھر اس چیز کو پڑھنے کی, تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے جیسے سمجھائی گئی تھی کلاس کے اندر. تو اس کے لیے نوٹس بنانا یہ بے ادبی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے تمام اکابرین کتاب کے اوپر نوٹس بناتے تھے, آج بھی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے اکابرین سے زیادہ ادب تو نہیں کر سکتے نا کتاب کا. تو انہوں نے جب اس کو بے ادبی نہیں سمجھا تو ہم اس کو کیسے بے ادبی سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کتاب پر نوٹس بلا تکلف بنائیں, صحیح ہے. اس کو ہمارے اکابرین کی زبان میں نا اس کو کہتے ہیں حاشیہ, حاشیہ, ٹھیک ہے. حاشیہ لکھنا یعنی جو کتاب کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اس عبارت کے سائڈز میں اپنے جو آپ کامنٹس لکھتے ہیں نا ان کو حاشیہ کہتے ہیں. تو ہمارے جو بزرگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر تو جو مین عبارت ہوتی تھی اس کے اوپر وہ ایک حاشیہ لکھتے تھے, یعنی ایک پڑھنے والے نا اس کے اوپر اپنی کامنٹس لکھتے تھے, تو وہ ایک لیول آف حاشیہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جب ان کے شاگرد ان کی کتاب یعنی ان کے حاشیہ کو پڑھتے تھے تو اس حاشیہ کے اوپر وہ ایک اور حاشیہ لکھتے تھے, یہ سیکنڈ لیول آف حاشیہ ہوتا تھا, یعنی سیکنڈ لیول آف کامنٹس. پھر اس کے بعد ایسی بھی کتابیں ہیں کہ جن کو ان کے بعد پڑھنے والوں نے اس کے اوپر تھرڈ لیول آف کامنٹس بھی لکھے, ٹھیک ہے, یعنی تیسرے لیول کا حاشیہ بھی لکھا. تو حاشیہ کے اوپر حاشیہ کے اوپر حاشیہ کے اوپر حاشیہ, ٹھیک ہے نا. اور یہ سب کیا ہوتا تھا, سب اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس ہوتے تھے کتاب کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اگر یہ بے ادبی ہوتی نا تو یہ جو مشائخ تھے یہ کام ہرگز نہ کرتے, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ بے ادبی نہیں ہوتی. ہاں بے ادبی کیا ہوگی, بے ادبی یہ ہوگی کہ لیکچر کے اندر آپ کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے اور آپ توجہ ہی نہیں دے رہی, سنی نہیں رہی اس بات کو, رائٹ, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی, اس کے نوٹس نہیں بنا رہی, یہ بے ادبی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کتاب کی بے ادبی ہوتی ہے, یہ علم کی بے ادبی ہوتی ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری بھی ہوتی ہے, ناشکری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا قرآن کو سمجھنے کا اور ہم جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دے رہے, رائٹ, ہم غور سے بات سن ہی نہیں رہے, ہم نوٹس ہی نہیں بنا رہے. تو یہ بے ادبی نہیں بلکہ یہ ناشکری اور ناقدری بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ناشکری اور ناقدری جو ہے اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اسے آگے کیا کہیں, بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش تو نہیں ہوتے نا, ٹھیک ہے. تو having said that, جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس ترجمے کے اندر اگر آپ کو کوئی ایکسٹرا بات بتائی جائے تو اس کو لکھنے کا بھی اہتمام کریں. تو آگے فرماتے ہیں الحاقتو. الحاقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے ترجمے میں یہاں لکھا ثابت ہو چکنے والی, ٹھیک ہے. ثابت ہو چکنا کیا مطلب اس کا, ثابت ہو چکنے والی, देखें, लफ्ज असल में क्या है, ये बुनियादी लफ्ज कोई अगर गेस करना चाहे कि ये जो अलहाकतु का लफ्ज है, साबित हो चुकने वाली, तो जहन में कोई बात आती है कि इसका इसकी बुनियाद क्या होगी, इसका रूट वर्ड क्या होगा। बहुत ही आसान है एक्चुअली, इसी वजह से आपसे पूछ रहे हैं। बुनियादी यानी इस वर्ड की बुनियाद क्या है, कौन से कौन सा वर्ड इसमें छुपा हुआ है, किसी के जहन में अगर आता हो तो। जो चीज नहीं, कौन सा वर्ड इसमें छुपा हुआ है जिससे कि आपको इसका, हाँ हकीकत, ठीक है, हमारे उर्दू जुबान के हिसाब से बोला जाए तो हकीकत का लफ्ज, ठीक है, माशाल्लाह, राइट। इसी को अरबी में क्या कहते हैं, हक, हक कहते हैं ना। हकीकत का असल में वर्ड क्या है, हक, जो चीज साबित होती है, सच्ची होती है, उसको हक कहते हैं, ठीक है। तो अगर अरबी ग्रामर की बुनियाद पर देखा जाए ना इसको, थोड़ा थोड़ा सा आपको अरबी ग्रामर का जरा यानी टच देने के लिए खाली, या फ्लेवर देने के लिए, ठीक है, ये असल में लफ्ज है हक्का, हक्का यहक्कु हक्कन फहुवा हाकुन, ठीक है, हक्का यहक्कु हक्कन फहुवा हाकुन। तो एक्चुअली ये मतलब क्या होता है, हक्का का मतलब होता है वो साबित हो गया, वो सच साबित हो गया, हक्का, ठीक है। तो जो चीज साबित हो जाती है ना, साबित होने वाला, साबित होने वाला, उसको क्या कहेंगे, हाकुन, हाकुन साबित होने वाला, ठीक है, हाकुन कहेंगे उसको। और उसका मुअन्नस क्या होगा, हाकतुन, क्योंकि आखिर में जो गोल ता लिख देते हैं ना, इससे लफ्ज मुअन्नस बन जाता है, ठीक है। तो हाकुन मुजक्कर है और हाकतुन उसका मुअन्नस है, ठीक है। तो उसके साथ अलिफ लाम लगा देंगे तो ये बन जाएगा अलहाकतु, साबित होने वाली, अलहाकतु साबित होने वाली। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है, हक्का, हा काफ, और काफ के ऊपर तशदीद, हक्का, ठीक है। तो हक याद रहेगा ना, हक का लफ्ज तो पता है हमें उर्दू जुबान के अंदर भी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो साबित होने वाली। फिर उसके बाद अल्लाह ताला सवाल करते हैं पढ़ने वाले से, यानी हमसे जो हम पढ़ रहे हैं कुरान को, मल हाकतो, साबित होने वाली क्या चीज है, यानी क्या तुम्हें मालूम भी है कि साबित होने वाली क्या चीज है, ठीक है। तो या कि पढ़ने वाले को ना झंझोड़ रहे हैं, उसकी उसकी फिक्र को बेदार कर रहे हैं इस तरह से सवाल करके। वरना ये सवाल जो है ना, ये किसी तालिबे इल्म का अपने उस्ताद से सवाल नहीं है, ऐसा कोई थोड़ी है कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला कोई तालिबे इल्म है, वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई अल्हाक का क्या चीज होती है। तो हम बस हम अल्लाह ताला को जवाब देंगे कि हाक का क्या चीज होती है, ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला तालिबे इल्म तो नहीं है, तालिबे इल्म तो हम हैं, राइट। तो फिर उस्ताद कभी तालिबे इल्म से सवाल करता है ना, वो क्यों सवाल कर रहा होता है, वो तालिब इल्म से इल्म हासिल करने के लिए सवाल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो तालिब इल्म की दिलचस्पी को उस मौजू में बढ़ाने के लिए सवाल कर रहा होता है, ठीक है। जवाब तो उस्ताद ने खुद ही देना होता है, ठीक है, क्योंकि तालिब इल्म को तो ये बात पता ही नहीं है। तो इसी तरह ना अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, मा अलहाकतु, मा क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। उर्दू में इसका तर्जुमा क्या से करेंगे, क्या, तो अलहाका क्या है। फिर तीसरी आयत के अंदर दोबारा, यानी दोबारा ये सवाल कर रहे हैं, वमा अदरा का मल हाका, और तुमने क्या समझा कि हाका क्या है, ठीक है। यानी इसी सवाल को जरा और अल्फाज इस्तेमाल करके पूछ रहे हैं, तुमने क्या समझा कि हाका क्या है, ठीक है। तो माँ यहां पर भी सवाल के लिए है, और अदरा का अदरा का मतलब होता है उसने समझाया, उसने समझाया। उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज इदराक। इदराक का लफ्ज पता है, ठीक है, कि आपको किसी चीज का इदराक हासिल हो जाए, यानी समझ हासिल हो जाए। ठीक है, इदराक का तर्जुमा उर्दू में कैसे करते हैं? समझ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अदरा का मतलब होता है उसने समझाया। और जो काफ लगा हुआ है आखिर में, काफ जो है ना, ये एक प्रोनाउन होता है। जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन्स होते हैं ना, यू, ठीक, यू जो है ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, यानी ये नाउन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना, अहमद इज ए गुड बॉय। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं अहमद इज ए गुड बॉय। इसके बाद जो जुमला बोलेंगे ना, तो उसमें हम फिर अहमद का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि अहमद गोज टू स्कूल एवरी डे, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, बल्कि हम क्या कहेंगे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अहमद इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ये जो हमने अगले जुमले में ही इस्तेमाल किया, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये अहमद की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन आप बार बार अहमद का नाम इस्तेमाल करने के बजाय अब आगे ना ही का नाम, ही का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आयशा इज ए गुड गर्ल, शी हेल्प्स हर मदर, राइट। तो अब आयशा का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पर शी बोला, शी हेल्प्स हर मदर। ठीक है ना, उसी तरह आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यू, यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी। तो ये जो आप यू कहते हैं ना, ये भी प्रोनाउन होता है। ठीक है, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो उर्दू में तुम जो है ये प्रोनाउन है, उर्दू का प्रोनाउन। उर्दू और अरबी में प्रोनाउन को क्या कहते हैं, जमीर। ठीक है, वो जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि उसके जमीर ने उसको मलामत करी, तो वही वाला लफ्ज जमीर प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जमीर। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन्स होते हैं, इनको उर्दू में और अरबी में जमीर कहते हैं, वात से। ठीक है, तो जमीर की फिर बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे मुजक्कर गायब के लिए जमीर हु की शक्ल में होती है, हु मुजक्कर, बल्कि मोअन्नस गायब के लिए जमीर हा की शक्ल में होती है, दो चश्मी हा अलिफ हा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो काफ है ना, ये भी एक जमीर है। ये जमीर किसके लिए इस्तेमाल होती है, यू के लिए, यू यानी तू। ठीक है, तो अदराका का तर्जुमा क्या हुआ, उसने समझाया तुझको। अदराका का तर्जुमा क्या बना, उसने समझाया, क्योंकि अदरा का तर्जुमा होता है उसने समझाया, और का ये जमीर है जो कि तू की तरफ पॉइंट कर रही है, उसने समझाया तुझको। ठीक है, वमा अदरा का, उसने क्या समझाया तुझको। ठीक है ना, ये इसका लफ्जी तर्जुमा बनता है कि उसने क्या समझाया तुझको। मल हाक का क्या है। ठीक है, तो ये इस आयत का लफ्जी तर्जुमा बनता है कि उसने क्या समझाया तुझको कि हाक का क्या है। ठीक है, ये इसका लफ्जी तर्जुमा बनता है। अगरचे के उर्दू जुबान में हम ऐसे बात करते नहीं है, ये उर्दू का मुहावरा नहीं है। ठीक है, मुहावरे का मतलब होता है बोलचाल का अंदाज। ठीक है, तो उर्दू जुबान में ना इस तरह का अंदाज इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस वजह से आपको ये जरा अनहोनी सी बात लग रही होगी कि उसने क्या समझाया तुझको। ठीक है, क्योंकि मफहूम इसका ये नहीं बनता। अंग्रेजी जुबान के अंदर इस तरह से बात की जाती है। ठीक है, वो क्या की जाती है, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डज इट टेल यू, व्हाट डज इट टेल यू, वमा अदराका। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है ना वो इंग्लिश में इस्तेमाल भी किया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इस तरीके से, एंड व्हाट डज इट टेल यू, ठीक है। उर्दू में इस तरह से बात नहीं करते कि और उसने क्या समझाया तुझको कि हक का क्या है, क्योंकि मफहूम इस आयत का ये है कि ये जो लफ्ज हाका है ना, ये हाका का लफ्ज आपको क्या बताता है, ये हाका का लफ्ज आपको क्या कैसे समझ में आता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हाका के लफ्ज से आप क्या समझे। ये असल में उर्दू में ना हम इस तरह से बात करते हैं कि आप हाका के लफ्ज से क्या समझे, ठीक है। लेकिन लफ्जी तर्जुमा अगर किया जाए तो लफ्जी तर्जुमा ये नहीं बनता, इस वजह से मफहूम को लिया जाएगा उर्दू के अंदर, ठीक है, कि हाका का लफ्ज सुन करके आप क्या समझे। ओके, तो ये बात आप अगर लिखने तो इंशाल्लाह फायदा होगा कि हाका का लफ्ज सुनकर आप क्या समझे, ठीक है, इस तरह से उर्दू में इसका मफहूम बनेगा इस आयत का। ओके, तो अल्लाह ताला इस तरह से दो दफा सवाल करते हैं हाका के बारे में, ठीक है। अच्छा, लफ्ज अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया, हाका के हक यानी हक हो चुकने वाली, साबित हो चुकने वाली, ठीक है। अब इसकी जो मजीद तफसील है ना वो कुछ आयतों के बाद आएगी, ठीक है, क्योंकि हाका ये कयामत को कहते हैं, सच साबित होने वाली क्या चीज है यहाँ पर, कयामत। लेकिन कयामत का तस्करा अब ना कुछ आयतों के बाद आयत नंबर 13 में शुरू होगा। अब जो अगली 9 आयतें हैं, राइट, इन 9 आयतों के अंदर अल्लाह ताला गुजरी हुई हलाक शुदा कौमों का तस्करा फरमा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौम समूद और आद का तस्करा करते हैं आयत नंबर 4 में, कज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया, के समूद ने यानी कौम समूद जो जो एक गुजरी है और कौम आद ने झुटलाया कारिआह को। कारिआह ये भी कयामत का एक नाम है, ठीक है, हाका भी कयामत का एक नाम है, कारिआह भी कयामत का एक नाम है। लेकिन कारिआह का मतलब क्या होता है, हाका का मतलब तो आपको बता दिया ना, हक साबित हो चुकी, हो चुकने वाली चीज, उसको हाका कहते हैं, सच साबित हो चुकने वाली। तो कारिआह का क्या मतलब मतलब है, ये वही कारिया है जो कि सूरा अलकारिया के अंदर आप सबको याद होगी वो सूरत, अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराक मलकारिया, वहां पर भी अल्लाह ताला इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हाका के बारे में दो सवाल कर रहे हैं, दो दफा सवाल कर रहे हैं, तो उसी तरह से वहां पर कारिया के बारे में अल्लाह ताला ने मलकारिया वमा अदराक मलकारिया, ठीक है। तो कारिया का मतलब क्या होता है, खड़खड़ाने वाली, ठीक है, ऐसे तर्जुमा करते हैं ना सूरा कारिया के अंदर, खड़खड़ाने वाली। यहां पर उन्होंने लिखा है कूट डालने वाली, कूट डालने वाली क्या मतलब कि आर्या जो है वो यानी कयामत के दिन में क्या होगा कि अल्लाह ताला हर चीज को ना खड़खड़ाएंगे, शेक करेंगे, हर चीज शेक होनी शुरू हो जाएगी। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा शेक होती है तो क्या होता है कि वो कूट जाती है, यानी कूट करके ना वो बारीक बारीक बन जाती है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान के अंदर जो चीनी मिलती है, ठीक है, इंडिया में पता नहीं मुझे, लेकिन पाकिस्तान में जो चीनी उमूमी तौर पर मिलती है ना, या कम से कम पहले मिलती थी, वो मोटे मोटे क्रिस्टल्स वाली चीनी होती है, राइट, बहुत ज्यादा वो बारीक सफूफ की शक्ल में चीनी नहीं होती। बाहर के मुल्कों में बहुत ही बारीक चीनी मिलती है, हमारे यहाँ मोटी चीनी मिलती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो जब आप मोटी चीनी को चाय के अंदर डालती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, फिर चमचे से उसको शेक करती हैं, राइट, शेक करती हैं, तो उससे क्या होता है, वो मोटे मोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो कूट कूट करके बारीक बन जाते हैं, ठीक है, वो फिर उस चीनी उस चाय के अंदर अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो मोटे क्रिस्टल्स अब कूट दिए गए, तो शेक करने की वजह से ना चीजें कूट जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कयामत के दिन अल्लाह ताला इतना शेक करेंगे, इतना शेक करेंगे चीजों को कि वो बारीक बारीक जो है वो कुट जाएंगी। जैसे कि आपने सूरह कारिया सूरह माउन के अंदर ना जो वो पहाड़ों का तस्कर है, ठीक है, कि वो रुई के गालों की तरह से उड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कैसे रुई के गालों की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो है तो पत्थर के बने हुए, और पत्थर सबसे ज्यादा सख्त चीज होती है इस दुनिया में, ठीक है। तो इतना ज्यादा पहाड़ों को शेक किया जाएगा कि वो पत्थर जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, टूटते टूटते उनके जो रेजे हैं ना वो इतने बारीक और पतले हो जाएंगे कि उनका वजन ही कोई नहीं होगा, इतने छोटे छोटे वो टुकड़े बन जाएंगे कि वजन ही कोई नहीं होगा। जब वजन कोई नहीं होगा तो फिर वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जमीन पे टिकने के लिए तो किसी चीज का वजन होना चाहिए ना, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल वजन को खींचती है अपनी तरफ। जब वजन ही कोई ना रहा तो फिर वो चीज उड़नी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से पहाड़ों के टुकड़े भी उड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसकी वजह क्या बनेगी? टूटना, राइट, शेक होना, एक्चुअली शेक होना वजह बनेगी। तो कार्या जो है वो जब भी खड़खड़ाने वाली को से इसका तर्जुमा किया जाता है। फअम्मा तमूदु फअहलिकु बित्तागिया। अच्छा, समूदों ने करा किया था, समूद यानी कौमे समूद ने, तो उसको फरमा रहे हैं कि वो जो समूद थे सो गारत कर दिए गए थे उछाल कर। क्या मतलब उछाल के गारत कर दिए गए थे? अच्छा, लफ्जी तर्जुमा, फा फा का मतलब होता है सो, उर्दू में जैसे पस या सो कहते हैं, ठीक है। अम्मा, अम्मा का मतलब इस तरह से करते हैं, तर्जुमा इस तरह करते हैं कि जहां तक इनका ताल्लुक है, जहां तक इनका मामला है, ठीक है ना। एज फॉर, अंग्रेजी में कहेंगे एज फॉर समूद, ठीक है, यानी जहां तक समूद का मामला है तो उनके साथ क्या हुआ कि उनको तो तागिया के जरिए से हलाक कर दिया गया, ठीक है ना। या जहां तक समूद का मामला है तो समूद को तो तागिया से हलाक किया गया, ठीक है। उहलिकू, वो हलाक कर दिए गए, वो हलाक कर दिए गए बेतागिया। तागिया का यहाँ पर तो तर्जुमा उछाल कर लिखा हुआ है ना, लेकिन आगे अगर आप मारूफ मसाइल 2 पेज आगे जा करके देखें तो यहाँ पर इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि तागिया तुगयान से मुश्तक है, ठीक है। तुगयान जिसके मानी हद से निकल जाने के हैं, जैसे समंदर के अंदर जो तुगयानी आती है, ठीक है, मद्दो जजर तुगयानी जो तूफान आता है, तो समंदर अपनी हदूद से बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो साहिल के ऊपर ज्यादा आ जाता है, राइट। उसकी जो समंदर की लेयर है वो ऊंची हो जाती है, जिस वजह से वो छलकना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ना उसको तुगयानी कहते हैं, क्योंकि वो हद से निकल रहा है बाहर, ठीक है। मुराद ऐसा, लेकिन यहां पर तुगयानी से क्या मुराद है? ऐसी सख्त आवाज है जो तमाम दुनिया की आवाजों की हद से बाहर है और ज्यादा है, जिसको इंसान का कल्ब और दिमाग बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है। यानी आपके पास अगर कोई बहुत जोर बार आवाज में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना शुरू कर दे, जिसको हम पाकिस्तान में डेक कहते हैं, डेक डेक बज रहा है जी, ठीक है। तो डेक क्या होता है? बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर के साथ। तो वो जो स्पीकर्स जब बहुत जोर से बजते हैं ना, तो आपके कानों में जब उनकी आवाज पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग फट जाएगा, राइट। औरतें खुसूसन कहती हैं कि लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा, इसको बंद कर दो, ठीक है। कानों को हाथ लगाते हैं, कानों को पकड़ खुद को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आवाज के अंदर जो है ना वो इतनी सलाहियत होती है कि वो आपके दिमाग को हिलाना शुरू कर देती है। रगें जो है ना, वो सर की रगें जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि फट जाएंगी, ठीक है। ये एक्चुअली हो क्या रहा होता है? ये बड़ा एक साइंटिफिक फिनोमेना है, ठीक है। हमारे हजरत ने अभी पीर जुल्फकार अहमद जो हमारे शेख हैं, उन्होंने पिछले इसी रमजान के अंदर सूरह वाकिया की तफसीर के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझाया था साइंटिफिकली, ठीक है। वो क्या कॉन्सेप्ट था कि इसको कहते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं इस दुनिया के अंदर, जितनी मखलूकात है ना, ठीक है, हर चीज के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी एक उसके अंदर इर्तआश होता है, वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन की एक एक खास स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको उस चीज की इंटरनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? बाहर तो हम अब जो चीजें देखते हैं तो वो यानी वो स्टिल होती है ना, वो हिलजुल तो नहीं रही होती है, नहीं रही होती है, ठीक है? तो फिर उनके अंदर ये फ्रीक्वेंसी यानी एक इर्तियाश कैसे पैदा होता है? तो इर्तियाश जो है ना, वो आपको बेशक बाहर से नजर ना आए लेकिन अंदर हर चीज के अंदर इर्तियाश होता है। कैसे इर्तियाश होता है? क्योंकि जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं तो वो एटम्स मिल करके बने हैं ना। एटम एटम सुना होगा ना, जो लोएस्ट पार्टिकल होता है किसी भी चीज का, जर्रा उसको अरबी में कहते हैं। तो जो एटम्स होते हैं हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, या पत्थर के अंदर भी एटम्स होते हैं, लोहे के अंदर भी एटम्स होते हैं, हर चीज के अंदर एटम होते हैं, ठीक है। तो एटम जो होते हैं ना, उसके अंदर पूरी एक दुनिया आबाद होती है। न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सब जो है ना, ये नहीं, ये आपने देखा होगा ना कभी साइंस की बुक के अंदर बच्चों की, कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं ये तो एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो गर्दिश कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी पूरी एक जिस तरह ऑर्बिट होता है ना, जैसे आपने सोलर सिस्टम को अगर देखा हो, सोलर सिस्टम की जो तस्वीर होती है, तो सन जो होता है वो सेंटर में होता है और बाकी प्लैनेट्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर उनके गिर्द घूम रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो ये जो घूम रहे होते हैं, तो ये तो एक एक मूवमेंट है ना, एक मोशन है ना, ठीक है। तो जितने पत्थर हैं, हर पत्थर के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स हैं, ठीक है, और हर एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। बाजाहिर लगता है कि जैसे ये चीज बिल्कुल इसके अंदर कोई हरकत है ही नहीं, लेकिन कितनी ज्यादा हरकत अंदर हो रही होती है, कितनी हरकत हो रही है, हर एटम के अंदर हरकत हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो हरकत हो रही होती है ना, इस हरकत की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसको उस चीज की इंटरनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब जब बाहर से कोई आवाज आती है ना, आवाज, तो आवाज की फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी हम लोगों को पता है, ठीक है ना, हर आवाज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो बाहर की जो आवाजें होती हैं, इन आवाजों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये आवाजें जिन चीजों से टकराती हैं उन चीजों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, और जो आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज किस शक्ल में आती है हमारे पास? पिछली एक दो क्लासेस पहले बात हुई है इसके ऊपर, बहुत तफसील से बात हुई है। आवाज जो हम तक पहुंचती है किस शक्ल में पहुंचती है, किसी को याद है? वो जो सारी बातें हुई थी जी, माशाल्लाह, साउंड वेव्स की शक्ल में, ठीक है ना। वो पुरानी आयात से इलाज वाला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो आवाज जो होती है वो साउंड वेव्स की शक्ल में आती है। तो ये साउंड वेव्स आ करके जब चीज से टकराती है ना, ठीक है, तो इन साउंड वेव्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जब साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस कहते हैं। जब ये रेजोनेंस रीच हो जाता है ना, यानी बाहर से आने वाली साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी चीज की इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, रेजोनेंस क्रिएट हो गया। जब ये रेजोनेंस क्रिएट होता है ना, तो क्या होता है कि वो चीज फट जाती है। क्या होता है? वो चीज फट जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, ठीक है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। ओके, तो अब जरा सा तस्वुर करें कि ये जो कौम समूद को अल्लाह ताला ने कैसे हलाक किया। कौम समूद को हलाक करने के लिए ये कोई हवा के झक्कर नहीं चलाए, राइट, कोई अबाबीले नहीं भेजी कंकरियां लेकर के, कि वो कंकरियां मारेंगी तो वो कौम समूद हलाक हो जाएगी, राइट। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा कि तुम जो है वो इस कौम को जमीन से उखाड़ो और ऊपर ले जा करके नीचे पटक दो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर कैसे इनको हलाक किया गया जी? कौम समूद कैसे हलाक हुई? अगर हमने जो आपको ये अभी कॉन्सेप्ट समझाया है रेजोनेंस का, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप मेरे सवाल का जवाब दें कि कौम समूद को अल्लाह ताला ने कैसे हलाक किया, ठीक है? जब तक आप जवाब लिखें या जैसे एक छोटा सा काम करके आप है। जी, एक चीख की आवाज आई थी चिंघाड़ से, तो ये तो आपको पहले भी पता था, ठीक है ना? ये तो सामने लिखा हुआ भी है, तो अभी जो आपको बातें समझाई हैं फिर उसका क्या फायदा होगा? तो जो समझाया है उस तरह से अगर आप इसका जवाब देते हैं ज्यादा अच्छा नहीं होता। भाई ये जो चिंघाड़ थी, चीख थी, ये क्या चीज थी? ठीक, जिन्होंने अभी जवाब दिया था तो वो अगर बताएं, ये जो चीख थी, चिंघाड़ थी, साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? साउंड वेव्स, राइट? ये साउंड वेव थी ना एक, तो हर साउंड वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? हर साउंड वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जो 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 जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा और उन्होंने एक चीख मारी, ठीक है ना? तो उस चीख की एक फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है? अब इस चीख से हुआ क्या कि ये जो कौम समूद के इंसान वहां पर रहते थे, राइट, इंसान जो रहते थे ना कौम समूद वाले, ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, तो भाई जो इंसान होते हैं उन इंसानों की भी एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे अंदर भी तो सेल्स मौजूद है ना, तो हमारे अंदर भी यही सब फ्रीक्वेंसी चल रही है। इंसान की अपनी भी एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? तो ये जो चीख की आवाज थी, जो साउंड वेव थी, उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पर मौजूद इंसानों की इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई होगी, ठीक है ना? अब ये जाहिर है हमारी एक थ्योरी है, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या क्या हुआ था, लेकिन बजाहिर ऐसे ही लगता है कि इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई होगी, तो ये रेजोनेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना? जब ये रेजोनेंस क्रिएट हो गया तो ये जो इंसान थे ना, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी इनकी या तो जिस्मानी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई या रूहानी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई, रूहानी कल्ब के या जिस्मानी कल्ब के, इधर वे या दोनों से, दोनों की इंटरनल फ्रीक्वेंसी एक ही होती होगी। जो भी हुआ, रेजोनेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये इंसान सारे के सारे मर गए, इंसान मर गए, ठीक है? क्या आपने कभी सुना कि जो कौम समूद के वहां पर जो घर थे, घर भी डिस्ट्रॉय हो गए, उनके जो बाकी यानी चीजें होंगी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, इंसान मर गए ना सारे, तो क्यों सिर्फ इंसान क्यों मर गए, घर क्यों नहीं तबाह हो गए, राइट? बाकी जो इनके आलात होंगे, जो भी इनके सवारी की चीजें होंगी, वो क्यों नहीं खत्म हो गई, ठीक है ना? वो इसलिए क्योंकि जो बाकी चीजें थी वहां पर उनकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से इस चीख की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, बल्कि इस चीख की फ्रीक्वेंसी सिर्फ इंसानों की फ्रीक्वेंसी से मैच हुई, तो सिर्फ इंसान मरे और कुछ भी नहीं हुआ, राइट? सिर्फ इंसान मरे, बाकी चीजें अपनी जगह पर साबित कायम रह गई, बाकी बच गई, ठीक है? तो इस तरह से ना साउंड वेव्स के जरिए से चीजों को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है? इसके लिए बम फेंकने की भी जरूरत नहीं है। यही बात हमारे हजरत ने बयान में भी कही थी कि अगर मुसलमान कुरान के ऊपर जरा ज्यादा तवज्जो कर देते ना, तो ये बम बम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है ना? सिर्फ साउंड वेव की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों को जिहाद के अंदर मार मार सकते थे, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने तो इसका जिक्र कुरान के अंदर किया हुआ है पहले से कि आवाज के जरिए से आप कैसे इंसानों को मार सकते हैं, ठीक है? तो अब ये जो आवाज वाला मामला है ना, कौम समूद के अजाब में क्या हुआ कि सिर्फ इंसानों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हुई, इंसान मर गए, राइट? कयामत के दिन क्या होगा? कयामत के दिन सूर फूकी जाएगी ना, तो सूर क्या है? सूर फूकी जाएगी, क्या मतलब? सूर जो है ना, ये तो असल में सूर आवाज को नहीं कहते, बल्कि सूर क्या है, सूर तो एक ट्रम्पेट है, एक जिस तरह लाउड स्पीकर होता है ना पुराने जमाने का, बल्कि सींग, सींग की शक्ल की एक चीज है ना ये, ठीक है। भैंसा, कोई बहुत बड़ा भैंसा हो तो भैंसे के सर के ऊपर कैसे सींग लगी हुई होती है, ये सींग की शक्ल क्या होती है कि ये जो भैंसे का सर होता है ना उसके साथ ये अटैच होती है सींग, राइट। दो सींगे होती हैं तो दोनों सींगों की क्या शक्ल होती है कि मोटी जगह जो होती है ना वो सर की तरफ होती है, और वहां से जो ये सींग ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर जाते जाते ये बारीक हो जाती है। तो सींग का एक एंड जो है ना वो बारीक होता है और एक एंड जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है। तो इस सींग को अगर आप भैंसे के सर से उखाड़ दें तो क्या होगा कि सर के साथ चिपका हुआ जो हिस्सा था ना सींग का वो खुल जाएगा, उसका मुंह खुल जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ से जो सींग है वो बंद होगी, जो बारीक हिस्सा होता है सींग का। जरा तस्वर करके वो भैंसे के सर की सींग जो है ना वो जरा अपने दिमाग में उसका तस्वर करें तो फिर बात समझ में आ जाएगी, राइट। तो सींग की शक्ल कैसे होती है, एक तरफ से मोटी होती है वो सींग और दूसरी तरफ से बारीक होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको सर पर से उखाड़ लें भैंसे की, तो जो उखड़ी हुई जगह होगी वो तो खुल जाएगी, ठीक है, ओपन एरिया हो जाएगा, ओपन एंड हो जाएगा उसका, और जो बारीक वाली जगह है वो बंद होगी। तो अब उस बारीक वाली जगह पर आप एक सुराख कर लें, सुराख कर लें, ठीक है, और फिर उस बारीक वाला एंड जो है सींग का उसको अपने मुंह में डालें और मुंह में ना मुंह से फिर उसके अंदर हवा ब्लो करें, ठीक है ना, एक फूंक ब्लो करें, तो उससे क्या होगा उसके मोटे वाले एंड से जोरदार आवाज निकलेगी, ठीक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर में भी तो यही होता है ना, उसी उसकी भी तो ऐसी सींग जैसी एक शक्ल होती है, एक तरफ से वो पतला होता है दूसरी तरफ से मोटा होता है, पतली तरफ से आप उसके अंदर कुछ बोलते हैं तो दूसरी तरफ से वो बढ़ करके आवाज निकलती है, ठीक, फैलती हुई आवाज निकलती है, इसी को लाउड स्पीकर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सूर है, सूर तो उस सींग को कहते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ फूंक मारेंगे उस सींग के अंदर जो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई होगी, ठीक है ना, उस सूर के अंदर वो फूंक मारेंगे जो अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, ठीक है ना। वो बैठे इंतजार कर रहे हैं कि बस मुझे हुक्म हो फिर मैं इसके अंदर फूंक मारूं। तो जब फूंक मारेंगे तो क्या होगा, उस सूर के यानी उस सींग के दूसरे एंड से क्या चीज निकलेगी, साउंड वेव्स निकलेंगी, आवाज निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये आवाज जो होगी ना ये एक यानी एक लेवल की आवाज नहीं होगी, ये इसकी एक इंटेंसिटी नहीं होगी, बल्कि ये छोटी आवाज से शुरू होगी और ये बढ़ती चली जाएगी, यानी बहुत कम आवाज से इसकी इब्तिदा होगी, ठीक है, और ये आवाज फिर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपने लिखा, इसको पढ़ लेते हैं कि सब चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी कयामत के दिन, सिर्फ इंसानों की नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात लिखी माशाल्लाह, राइट। लेकिन ये सब की कैसे मैच कर जाएगी, क्योंकि आवाज की तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक, तो एक फ्रीक्वेंसी फिर किसी एक चीज से ही मैच करनी चाहिए ना। लेकिन कयामत के दिन जो सूर होगी उसकी एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज होगी, राइट। शुरू में एक फ्रीक्वेंसी होगी, फिर वो बढ़ेगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी बनेगी, फिर वो बढ़ेगी, तीसरी फ्रीक्वेंसी बनेगी, फिर वो बढ़ेगी, चौथी फ्रीक्वेंसी बनेगी। इस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसीज बनेंगी ना, जितनी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, हर एक की इंटरनल फ्रीक्वेंसी से सूर की फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी मैच होती चली जाएगी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी मैच होती चली जाएंगी वैसे वैसे वो चीजें बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना, वो फटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरू में ना ये सिर्फ खड़खड़ाने से बात स्टार्ट होगी, यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है ना वो एकदम से मैच होना नहीं, जैसे कि आपके अगर कानों के सामने डेक बज जाए, बहुत जोर का डेक बजाए म्यूजिक, राइट, तो पहले तो एक इरतियाश पैदा होता है ना, ठीक है ना, आपको लगता है जैसे कि आपकी जो नर्व्स हैं, जो वेन्स हैं आपके सर के अंदर, ये हरकत करना शुरू हो गई है, ठीक है ना। अब ये हरकत जो है ना वो बढ़ती है, तो आपके सर में ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, अगर कर जाए तो शायद आपकी जो वेन्स है ना वो बर्स्ट भी हो जाए, शायद ये जो ब्रेन हेमरेज होता है, राइट, ब्रेन हेमरेज जो होता है ना लोगों को शायद इसी वजह से, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर तो हूं नहीं लेकिन सुना ऐसा ही है कि रग जो है वो फट जाती है, ठीक है। तो वो फट कैसे जाती है, गालिबन ऐसे ही कुछ मामला होता होगा, ठीक है, कि भाई वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई किसी चीज से और वो रग जो है ना वो फट गई, ठीक है। तो शुरू में लेकिन इर्तियाश होता है, शुरू में वाइब्रेशन होती है और इवेंचुअली जाकर के फिर वो फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो फिर वो चीज फट जाती है, ठीक है। तो कयामत के दिन फिर हर एक चीज के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सॉरी मैच कर जाएगी, इस वजह से हर चीज जो है ना वो अल्टीमेटली हर चीज जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो लिखा था मारुफ मसाइल में कि कौम समूद की नाफरमानी जब हद से बढ़ गई तो उन पर अल्लाह का अजाब इसी सख्त आवाज की सूरत में आया था जिसमें तमाम दुनिया की बिजलियों की कड़क और दुनिया भर की सब सख्त आवाजों का मजमुआ था जिससे उनके दिल फट गए। अब जाहिर है ये जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है तो ये तो मॉडर्न डिस्कवरीज के बाद ही ये वाली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सामने आई ना, ठीक है। तो जब मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने तफसीर लिखी थी या उससे पहले जो अकाबरीन ने इसकी तफसीर करी है तो उस वक्त जो है वो फिजिकल साइंसेज ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करी थी, तो इस वजह से इनकी एक्सप्लेनेशन ऐसी ही है कि जैसे कि दुनिया की बिजलियों की कड़क और दुनिया भर की सख्त आवाजों का ये मजमुआ थी, तो इतनी जो सख्त आवाज थी ना तो इसकी वजह से इनके दिल फट गए, ठीक है। तो ये भी कोई गलत बात नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने पास जो अवेलेबल नॉलेज थी उसकी बेसिस पर इस बात को एक्सप्लेन किया। हम भी जो है वो अवेलेबल नॉलेज की ही बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें भी कोई 100% को थोड़ी थोड़ी पता है कि भाई ऐसे ही हुआ था एग्जैक्टली, तो ये भी एहतमाली दर्जे में ही है ये सारी बात हो रही है, ठीक है। तो समूद को अल्लाह ताला ने कैसे हलाक किया, तागिया से हलाक किया, और तागिया से यहाँ पर मुराद जो है वो हद से बाहर निकल जाने वाली आवाज, ठीक है। वह अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन, तो अब यहाँ पर फिर दूसरी कौम का जिक्र कर रहे हैं, पहले समूद और आद दोनों का एक आयत में, आयत नंबर 4 में जिक्र कर दिया कि इन्होंने गुनाह क्या किया था, इन्होंने आखिरत को झुटलाया था, ठीक है। तो जहां तक समूद का ताल्लुक है तो उनको तो हमने तागिया से हलाक कर दिया। वह अम्मा आदुन एंड एज फॉर आद, यानी जहां तक आद का ताल्लुक है तो बस उनको हलाक कर दिया गया बिरीहिन हवा से, रीह कहते हैं हवा को, सरसरिन ठंडी सन्नाटे की हवा, ठीक है। आतियतिन एक मिनट, इसका सरसरिन का यानी ऐसी हवा थी जो कि सन्नाटा जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, तो यानी आवाज से आपने कभी अगर आंधी वगैरह में इत्तेफाक हुआ हो तो सुना होगा कि उससे ना बहुत आवाजें आती हैं आंधी की, ठीक है, जैसे कि वो चीखने की आवाजें हैं, हवा से ऐसी आवाजें आती हैं, ठीक है ना। तो सरसरिन का तो मतलब हो गया सन्नाटेदार आवाज, सन्नाटेदार हवा, ठीक है। और आतियतन का क्या मतलब हुआ, यानी बहुत ही सरकश वायोलेंट, ठीक है, यानी हंगामा बर्पा कर देने वाली ऐसी वो हवा थी, ओके। तो इनको अल्लाह ताला ने फिर हवा का अजाब इनके ऊपर भेजा, लेकिन इस हवा के अजाब की फिर थोड़ी और तफसील अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर बयान कर रहे हैं। रीह का मतलब लिख लिया, ये तो पता ही होगा कि हवा को कहते हैं, ठीक है। वुजू टूट जाने के लिए भी जो हवा खारिज होती है तो उसको भी रीह खारिज होना कहते हैं। सरसरिन का मतलब हुआ चीखने वाली आवाज, सन्नाटे वाली सॉरी चीखने वाली हवा, सन्नाटेदार हवा। और आतिया का मतलब हुआ कि यानी निकल जाए हाथों से, तर्जुमा इन्होंने किया है लेकिन मतलब ये हुआ कि यानी तबाही फैला देने वाली, ठीक है ना, वायोलेंट इंग्लिश में कहेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद सख़रहा अलैहिम सब अलयालिम व तमानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया। ये लंबी आयत है तो इसका तर्जुमा पहले बामुहावरा पढ़ लेते हैं। کہ مقرر کر دیا اس کو ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار، پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے، گویا وہ ڈھنڈ ہیں کھجور کے، یا ڈھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، ٹھیک ہے، تنے، اردو میں آسان لفظ آج کل ہے تنے، ٹرنکس. سخرہا علیہم، سخرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو نا وہ آپ کسی کام سے لگا دیں، جیسے مسخر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ کسی کو یعنی کسی چیز کے اوپر مقرر کر دیں، لگا دیں کسی کام سے کسی کو، ٹھیک ہے. مسلط کر دینا، ایسے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلط کر دیا ان کے اوپر. سبعہ کہتے ہیں 7 کو. لیال، یہ لیل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، لیل اردو میں بھی ہم رات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ثمانیتا، یہ 8 کو کہتے ہیں، 8، ٹھیک ہے. تو سبع لیال، 7 راتیں. ثمانیتا ایامن، ٹھیک ہے، ایامن تو پتہ ہی ہوگا یوم کی جمع ہوتی ہے، یوم دن کو کہتے ہیں. تو 8 دن، یعنی 7 راتیں اور 8 دن. یہ کیسے بنی کہ اگر جیسے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بدھ کے دن شروع ہوئی، بدھ کے دن میں شروع ہوئی، ٹھیک ہے، تو دن ختم ہوتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر جمعرات کا دن شروع ہوا پھر رات آئی، پھر جمعے کا دن شروع ہوا پھر رات آئی، پھر اس کے بعد یہ چلتے چلتے اگلے بدھ کے دن میں جا کر کے ختم ہوئی، ٹھیک ہے نا، اگلے بدھ کے دن. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں جمعہ 8 دن، رائٹ، اسی طریقے سے بدھ 8 دن، رائٹ. تو 8 دن ہو گئے، لیکن ان 8 دنوں کے درمیان راتیں کتنی تھیں؟ 7 راتیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ 7 راتیں اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلط رہی. حسومن، حسومن کا مطلب ہے لگاتار، ٹھیک ہے، کنٹینیوس. حاسمن کی یہ جمع ہے، آگے مارک مسائل میں بھی لکھا ہوا. تو اس کے بعد ان کے ساتھ حشر کیا ہوا؟ فطر القوم. تو فا کا ترجمہ تو پھر سے کر دیتے ہیں اردو میں، پھر. ترا، تو نے دیکھا، ٹھیک ہے، یا تو دیکھتا ہے. القوم، اس قوم کو، یعنی جس قوم کی بات ہو رہی نا، ان عاد کی، تو عاد کو القوم یہاں پر کہا، ٹھیک ہے. پس تو دیکھتا ہے اس قوم کو. فیہا سرعا، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اس ہوا کے اندر، فیہا اس کے اندر، سرعا، سرعا کا مطلب یہ یعنی گر گئے، ٹھیک ہے، یہ گر گئے، اوکے، یعنی کھڑے نہیں رہ سکے. حالانکہ یہ جو تھے نا وہ بہت زیادہ مضبوط لوگ تھے اور بڑے لمبے لمبے قد والے لوگ تھے. یہ جو قوم عاد ہے اس کے بارے میں کافی تفصیل لکھی ہے کتابوں کے اندر، کہ یہ جو تھے نا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے تھے جن کا نام عاد تھا، ٹھیک ہے. تو ان کی اولاد جو ہے نا ان کو عاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام سے نا یہ 3 جنریشنز بعد کی قوم ہے، اوکے. لیکن اس کے بھی جو ہے نا وہ 2 جنریشنز گزری ہیں، ایک کو عاد اول کہتے ہیں اور ایک کو عاد ثانی کہتے ہیں. عاد اول یہ نوح علیہ السلام کے بعد 3ری جنریشن تھی غالباً، ان کو عاد اول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عاد ثانی جو ہے نا یہ کوئی 6 جنریشنز کے بعد آئی تھی تقریباً، رائٹ، 6 جنریشنز کے بعد، ٹھیک ہے. عاد ثانی ہی کو سمود کہا جاتا ہے اور عاد اول جو ہیں ان کو عاد ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عاد اول جو تھے نا، یعنی جو 1st جنریشن آف عاد جو تھی، تو یہ بہت لمبے چوڑے اور دیو ہیکل قسم کے لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. 80 ہاتھ، جیسے آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے ہاتھوں کو ناپیں نا، تو 80 ٹائمز اگر ہم اپنے ہاتھوں کو لمبا کریں تو اتنے لمبے ان کے قد ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جب یہ گر گئے، کیا ہوا؟ سرعا، کہ یہ گر گئے، کأنہم اعجاز نخل خاویت. تو یہ کیسے دکھتے تھے گرے پڑے ہوئے جو زمین پہ نا, یہ کیسے دکھتے تھے؟ کأنہم جیسے کہ یہ اعجاز تنے نخل کھجور خاویت کھوکھلے. ٹھیک ہے, یعنی کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنوں کی مانند یہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, اب کھجور کا جو درخت ہوتا ہے, اگر کسی نے دیکھا ہو بڑے مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں کھجور کے, تو ان میں ایک درخت جو ہوتا ہے نا وہ بہت لمبا ہوتا ہے, بہت اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے تنے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اونچے ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. کچھ کھجور کے درخت تو اتنے بڑے ہی نہیں ہوتے, بلکہ کچھ تو ڈورف بھی ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے قد کے ہوتے ہیں, ان کی کھجوروں جو ہیں وہ زمین پر لٹک رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں وہ بڑے اونچے اونچے اور لمبے لمبے ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے زمین پر پڑے ہوئے دکھتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے قد ہی اتنے بڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہوا کے ذریعے سے پٹخے گئے نا زمین کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی ہوا ایسی چلتی تھی کہ یہ ہوا جو ہے وہ ان کو اپنی جگہ سے اڑا کر کے اونچائی پر لے کر کے جاتی تھی اور پھر ان کو زمین کے اوپر لا کر کے مارتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اس کی وجہ سے نا یہ, یعنی جب ظاہر ہے اتنی اونچائی سے کوئی انسان زمین پہ آ کر کے تیزی کے ساتھ پٹخا جائے گا تو زندہ تو نہیں رہ سکتا نا. ٹھیک ہے, لیکن ان کو کوئی توڑا موڑا نہیں گیا, بس یہ اس طرح سے پٹخا گیا, ان کے سر پھٹ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ان کی ہڈیاں جو ہے وہ چور ہو جاتی ہوں گی اور اس کی وجہ سے مر جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو اوور آل باڈی تھی وہ تو اپنی اصل صورت میں برقرار رہتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. اب یہ کھوکھلے کی کیا تفسیر ہے اس کے اندر, یہ ذرا ذہن اس طرف جاتا ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, کہ کھوکھلے تنے سے کیوں ان کو تشکیل دی گئی, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جو کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال سو فار؟ جی ذرا میوٹ کیا تھا. اچھا, آپ نے جو جوائن کیا ہے تو آپ پلیز میوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا آد کے عذاب کا معاملہ. اچھا, فہل ترا لہم بم باقیہ, آٹھویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو دیکھتا ہے کہ کوئی ان میں کا بچا, یعنی ابھی آد کے ہی عذاب کا تذکرہ کنٹینیو ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فہل ترا, فا پھر وہی پس یا پھر کے لیے استعمال ہوتا ہے, حل یہ بھی ایک کوشچن کرنے کا حرف ہے, سوال, یعنی حرف استفہام کہتے ہیں, سوال کرنے والا حرف حل. ٹھیک ہے, کیا ترا تو دیکھتا ہے, لہم ان کی طرف, من باقیت کوئی باقی ہے, یعنی کوئی ان میں بچا اس عذاب کے بعد, اس ہوا کے عذاب کے بعد کوئی بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے, یعنی ہوا نے ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا. اوکے, ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی آٹھویں آیت. کسی کو سوال ہے ترجمے کے, کسی لفظ کے بارے میں کوئی چیز ریپیٹ کروانی ہو تو آپ پوچھ لیے گا. اچھا, اس کے بعد نویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسری قوم کے بارے میں, بلکہ ایک سے زیادہ دوسری قوموں کے بارے میں. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ, اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں خطائیں کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں. جاء فرعون, فرعون آیا. ٹھیک ہے, جاء جو ہے وہ ایک بہت ہی سمپل ٹائپ کا ورب ہوتا ہے, فعل, جس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. تو چونکہ جاء کے بعد فرعون کا اسم موجود ہے تو اس کا مطلب ہوگا اور فرعون آیا. واو کا ترجمہ تو اور سب کچھ پتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور فرعون آیا. ومن قبلہ, اور جو اس سے پہلے تھے, جو اس سے قبل تھے. ٹھیک ہے, یہ جو فرعون تھا نا, ये एक पूरी डायनेस्टी के जो बादशाह होते थे ना उनको फिरौन कहते थे। मिस्र के अंदर ये एक यानी एक नस्ल चली, नस्ल गुजरी है बादशाहों की, ठीक है ना। तो इसका तذکرہ जो है वो सूरह यूसुफ के अंदर भी है, ठीक है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जब गुलाम बना करके फिर वो मिस्र में आकर के बेचे गए थे ना, तो उस वक्त भी मिस्र के अंदर बादशाहत थी, ठीक है। लेकिन उस वक्त का जो बादशाह था वो कोई बहुत बड़ा जालिम और जाबिर किस्म का बादशाह नहीं था, ठीक है। बजाय लगता है कि वो बस एक यानी एक नॉर्मल सा अपने अवाम के बारे में फिक्र करने वाला और एक हकीकत पसंद और इस किस्म का यानी एक नॉर्मल सा बादशाह था, अगरचे कि मुसलमान नहीं था, ठीक है। लेकिन एक यानी कोई जालिम जाबिर तरह से उसके जिक्र नहीं आता, ठीक है। अपने कौम के लोगों के लिए वो अच्छा अच्छा बादशाह था, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां पर ले जा करके गुलाम बना करके भेजा गया, तो उस बादशाह को जो जो वजीर था ना उसने इसको खरीद लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद दिया, ठीक है। तो उनके घर में फिर ये रहना शुरू हो गए, अजीज मिस्र जिनको कहते हैं, ठीक है। तो अजीज मिस्र की जो बीवी थी फिर उनके साथ सारा वो सूरह यूसुफ वाला मामला हुआ, और बिल आखिर सारी तफसील के बाद फिर ये हुआ कि जो अजीज मिस्र था वो इतने सालों के बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसको प्रमोशन दी। बादशाह मर गया होगा तो अजीज मिस्र फिर बादशाह बन गया, ठीक है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर वो सारा ख्वाब वाला मामला हुआ, और बिलाखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीज मिस्र के दरबार के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन अता कर दी, ठीक है। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भाइयों के जरिए से पैगाम भेजा कि आप मेरे साथ यहाँ पर मूव हो जाए, ठीक है ना। कनान में वो रहते थे जो कि फलस्तीन की एक जगह है, ठीक है। फलस्तीन के मुल्क में एक शहर था कनान, वहां पे याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, ठीक है, अपने बेटों के साथ। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको इनवाइट किया मिस्र में, तो वो कनान को छोड़ करके वो अपने सारे बेटों और बीवी के साथ मिस्र में मूव हो गए, ठीक है। अब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदगी तक तो ये लोग बड़े अच्छे से रहे वहां पर, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इनकी तादाद जो है वो बढ़नी शुरू हुई, बनी इसराइल, राइट। याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनकी अल्लाह ताला ने फिर औलाद में खूब बरकत अता फरमाई, ठीक है। तो ये लोग मिस्र में ही रहते थे उस वक्त, ठीक है। तो मिस्र का तो बादशाह वही नॉन मुस्लिम ही होता था ना, वो मुसलमान तो नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब ये जनरेशन जैसे जैसे आगे आई आगे गुजरी ना, तो ये जो एक अच्छी रिलेशनशिप थी याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली और मिस्र के बादशाह के दरमियान, ये रिलेशनशिप खराब हो गई, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि जो यानी एक राइवलरी शुरू हो गई, ठीक है, राइवलरी एक दुश्मनी शुरू हो गई, और जिसकी वजह से जो जो मिस्र के बादशाह थे उन्होंने बनी इसराइल के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर यानी तशद्दुद करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि भाई ये तो भाई फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जैसे कहते हैं ना कि यूरोप वालों को आजकल बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है ना कि ये सारे के सारे जो मुसलमान हैं ये अपने मुल्कों को छोड़ करके हमारी तरफ इमिग्रेशन करके आ गए, ठीक है ना। शुरू में तो उन्होंने बड़ा हाथों हाथ लिया कि हाँ भाई ये हमारे इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट करेंगे और ये हमारे मुल्क में आकर के हमारे मुल्क के अच्छे सिटीजन बन करके रहेंगे। लेकिन जब मुसलमानों की तादाद बढ़नी शुरू हुई यूरोप के अंदर, तो आपको पता है कि क्या हो रहा है वहां पर, राइट। फ्रांस वालों को फिक्र होनी शुरू हुई और नेदरलैंड्स वालों को फिक्र होनी शुरू हुई कि भाई ये मुसलमान तो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे लोग जो हैं उनकी तादाद तो कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादियां वादियां भी नहीं होती और बच्चों को वैसे ही हम पसंद नहीं करते हैं। तो यूरोप की जो व्हाइट पॉपुलेशन है वो कम हो रही है और मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है। तो इसके नतीजे में ना ये जो पहले अच्छी रिलेशनशिप होती थी अब वो एक राइवलरी शुरू हो गई, अब दुश्मनी की शक्ल अख्तियार कर गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर भी ऐसे हुआ होगा कि दुश्मनी शुरू हो गई। और एक मिनट होल्ड कीजिएगा। राइवलरी शुरू हुई तो बिलाखिर क्योंकि उन लोगों के पास जो है वो ताकत थी, फोर्स थी, और तादाद में वो बहरहाल बनी इसराइल से ज्यादा ही थे, ठीक है। तो उन्होंने फिर बनी इसराइल के ऊपर मदालिम करने शुरू हुए। तो इस तरह से ना कुछ जनरेशन पास होती गई, हत्ता के ये वाला बादशाह आया जिसको के हम आम तौर पर फिरौन कहते हैं, लेकिन फिरौन तो उसका खाली टाइटल था, ठीक है ना। हर बादशाह को ही फिरौन कहते थे, जैसे फराइन मिस्र, तो फराइन जो है वो तो सारे बादशाहों को कहते हैं ना, सिर्फ एक को थोड़ी। उसका तो असल नाम जो है वो तो किताबों में लिखा हुआ मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो वो वाला बादशाह आया कि जिसके दौर में फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा नबी बना करके, ठीक है। फिर वो जो है वो सारा का सारा फिर मामला हुआ। तो ये जो फिरौन था ना, ये पहला बादशाह नहीं था कि जो कि बनी इसराइल पर जुल्म करता था, बल्कि इससे पहले वाले भी जो बादशाह है ना, वो फिर बनी इसराइल के पर जुल्म क्या करते होंगे, या यहाँ पर कबलहू से मुराद जो है वो हो सकता है कि उससे पहले गुजरे हुए जितने भी बुरे लोग थे उन सब का तस्करा यहाँ पर हो। कबलहू से मुराद सब लोग ही हो कि जिन्होंने के बुराई बुराई के काम किए। तो वमन कबलहू, और इससे पहले जो लोग आए, ठीक है, यानी फिरौन आया और उससे पहले जो लोग गुजरे। वल मुतफिकातु बिल खातिया, ठीक है, मुतफिकात का तर्जुमा क्या होता है, उलट जाने वाली बस्तियां, उलट जाने वाली बस्तियां। बिल खातिया, खताएं करते हुए, खातिउन का मतलब होता है खता करने वाला, और खातियातुन का मतलब होगा कि खता करने वालियां वाली। तो यहां पर चूंकि बस्तियों की बात हो रही है, तो बस्तियों का जो लफ्ज है वो मुअन्नस है, तो इस वजह से खातियातुन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो मुतफिकात बिल खातिया के ये सब जो थे ना, फिरौन और उससे पहले के लोग, और ये जो मुतफिकात वाली बस्तियां थी, ये खता करने वाली थी यानी गुनाह करने वाली थी, ठीक है। खता से मुराद यहाँ पर नाफरमानी, गुनाह, शिर्क, ठीक है। मिस्र के बादशाह के वक्त इस्लाम आ चुका था, के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो सब दीन इब्राहिमी पर थे। दीन इब्राहिमी क्या था भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई जाती दीन को थोड़ी था, ठीक है। तो दीन इब्राहिमी था क्या? इस्लाम था, ठीक है ना। ये इस्लाम जो है, ये लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम के लाई हुई शरीयत के लिए तो बोला जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कवानीन लेकर के आए, राइट, जो कुरान लेकर के आए, तो कुरान और कवानीन जो कुरान के अंदर मौजूद हैं, इन सबको इस्लाम कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा लफ्ज इस्लाम जो है वो हर उस दीन को कहा जाता है जो कि अल्लाह ताला ने अपने किसी भी पैगंबर के जरिए से भेजा, ठीक है। तो दीन इस्लाम जो है ये कोई नया दीन नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से अल्लाह ताला की हुक्मों की फरमाबरदारी, उसको इस्लाम कहा जाता है, ठीक। तो इस वजह से ना ये कहा कि ये मुसलमान नहीं हुआ था, यानी ये ईमान नहीं लेकर के आया था, ये तो इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है। दीन इब्राहिमी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो खास नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के पस मंजर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उस जमाने में जो जो लोग शिर्क नहीं करते थे, ठीक है, जो लोग शिर्क नहीं करते थे नबी अलैहिस्सलाम के आने के जमाने की बात हो रही है, तो उनको क्या कहा जाता है कि वो दीन इब्राहिमी पर थे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तौहीद का दर्स लेकर के आए थे, तो ये भी तौहीद के ऊपर ही कायम थे, ये शिर्क नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन मजीद तफसीलात उस वक्त तक चूंकि नहीं उतरी थी, तो इस वजह से इनको मुसलमान नहीं कहा जाता, बल्कि उनको दीन इब्राहिमी, ठीक है। क्योंकि ये जो बात हो रही होती है ना, नबी अलैहिस्सलाम के दौर से मुताल्लिक बात हो रही होती है, ठीक है, तो इस वजह से उनके लिए दीन इब्राहिम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मतलब सबका एक ही है कि सभी जो है वो दीन इस्लाम ही है, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आए, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए, चाहे जो है वो नूह अलैहिस्सलाम, चाहे सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक है, सब अच्छा। अब मुतफिकात से यहाँ पर कौन मुराद है? तो ये है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, ठीक है। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर कैसे अजाब आया था कि अल्लाह ताला ने इनको यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनको जमीन से ना उखाड़ा था, ठीक है, गोया के जिस जगह ये लोग रहते थे ना। अच्छा, ये छोटी छोटी बस्तियां थी, ये कोई एक बड़ा सा टाउन नहीं होगा, ठीक है, या एक बस्ती नहीं होगी, बल्कि ये बस्तियों का मजमुआ थी, ठीक है, गोया के जैसे कि पूरा एक एरिया था जहां पर के इनके छोटे 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 सेटलमेंट्स होंगी, ठीक है। तो नूह अलैहि जो लूत अलैहि सलाम थे, ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के भतीजे थे, ठीक है, इब्राहिम अलैहि सलाम के भतीजे। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था कि ये इस कौम में जा करके तौहीद की दावत दें। ठीक है, तो जब पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही रहते थे ना इराक में, राइट। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, ठीक है, फिर वो आग से जो है वो सही सलामत बाहर निकल आए, तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने इराक को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इराक से जो उन्होंने कूच किया था तो उनके साथ कौन थे? सिर्फ उनकी बीवी सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा, राइट, और लूत अलैहि सलाम जो कि उनके भतीजे थे, जो उनके ऊपर ईमान लेकर के आ गए थे, और कोई ईमान लेकर के नहीं आया था। ठीक है ना, इब्राहिम खलीलुल्लाह के ऊपर उनकी बीवी और भतीजे के अलावा कोई भी ईमान नहीं लेकर के आया। ठीक है ना, तो हम क्यों क्यों इतना परेशान होते हैं कि भाई हमारी कोई बात ही नहीं सुनता? भाई अल्लाह ताला के खलील जो थे उनकी किसी ने बात नहीं सुनी, तो हम क्या, ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। हमारा काम होता है कि अपना काम यानी लोगों की खैरख्वाही में लोगों को नेकी की तरफ बुलाना। ठीक है, अच्छा खैर, तो लूत अलैहिस्सलाम जो है वो इस कौम की तरफ भेजा गया, तो जब उन्होंने फिर लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आपको पता ही होगा कि उन्होंने कितनी यानी बेहयाई वाले काम किए थे जो कि कभी किसी ने नहीं किए थे उससे पहले। ठीक है, तो फिर इनको इस तरह से सजा दी गई कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको उखाड़ा जमीन से, और जमीन से जो इनको उखाड़ा ना, तो इस तरह से उखाड़ा कि यानी सिर्फ ऊपर की एक लेयर नहीं उखाड़ी, बल्कि बहुत गहराई से उनको ऊपर उखाड़ दिया। ठीक है, अब जो गहराई से इनको उखाड़ दिया ना, तो उससे क्या हुआ कि जो जमीन के अंदर पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं, ठीक है, तो कोई वाटर रिजर्वॉयर जो है ना वो वहां पर होगा, अल्लाह की मर्जी से मौजूद होगा वहां पर। वो वाटर रिजर्वॉयर जो है वो खुल गया, उसका मुंह खुल गया। ठीक है ना, तो उसके मुंह खुलने की वजह से जो ये जो एक गढ़ा पैदा हुआ ना, इनकी पूरी बस्ती को जमीन से उखाड़ने की वजह से जो एक गढ़ा पैदा हुआ जमीन के अंदर, बहुत ही गहरा गढ़ा, ठीक है, बहुत बड़ा और गहरा गढ़ा, तो ये क्या बन गया, किसी को पता है? ये जो गढ़ा था ये क्या बन गया, किसी को पता है? ये आज भी मौजूद है ये गढ़ा, लेकिन इसका एक नाम है जी, ये डेड सी बन गया। ठीक है, बहरे मौता, डेड सी। ठीक है, तो यानी पूरा पानी पानी जमीन के अंदर से जो है वो पानी निकल आया होगा, और इस घड़े के अंदर वो पानी फिल हो गया। ठीक है, तो अब जब उसको उखाड़ करके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इसको ऊपर लेकर के गए, बहुत ऊंचाई में लेकर के गए, और फिर उलट करके तो है ना इनको जमीन के ऊपर दे मारा। ठीक है, तो अब इनकी जितनी भी जो 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 चीजें थी ना, वो सारी की सारी उल्टे मुंह उस पानी के अंदर, ठीक है ना, उल्टे मुंह उस पानी के अंदर जा करके लैंड करी, लैंड करी। तो ये चीजें जो है ना, ये अभी भी बाहर से नजर भी आती हैं कुछ कुछ। ठीक है, अब आप डेड सी के अंदर बाहर से देखें ना उसके अंदर, तो ये चीजें नजर भी आती हैं, अगरचे कि डेड सी का जो पानी है वो पानी बहुत ही डिफरेंट पानी है, पूरी दुनिया के किसी समंदर का ऐसा पानी नहीं है जैसे कि डेड सी का पानी है। इसके अंदर नमकियात और मिनरल्स जो हैं वो बे इंतहा है। ठीक है ना, इसकी कड़वा का तो मुझे नहीं पता, हाँ कड़वा तो होगा जाहिर है कि जब इतनी नमक उसके अंदर होगा। अच्छा, उसकी खासियत क्या है कि उसके ऊपर अगर जाकर के आप स्विमिंग करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप तैर आप यानी आप उसमें डूब नहीं सकते, क्योंकि उसकी हाँ कोई डूबता नहीं है उसके अंदर। तो लोग जो है ना उसके ऊपर बाकायदा जा करके बगैर किसी कश्ती के, बगैर किसी फ्लोटी के उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, और उसके पानी में अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा रखी है कि जिल्द की बीमारियां हो या और किस्म की बीमारियां हो, वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर शिफा रख दी। अब ये जो शिफा रखी है, ये रूहानी बीमारी से शिफा तो नहीं है ना, ये तो जिस्मानी बीमारी से शिफा है। लेकिन साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सी चीज बताई कि जिन जगहों के ऊपर अल्लाह ताला का अजाब आया है, तुम वहां मत जाओ। ठीक है, वहां मत जाओ, बल्कि अगर मजबूरन तुम्हें वहां से गुजरना पड़े तो तेजी के साथ गुजर जाओ वहां से। ठीक है, तो अब जब वहां पे शिफा है पानी के अंदर, तो अब ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए आजमाइश हो गई। क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है ना, ठीक है, और उसको बीमारी का इलाज कहीं से ना मिल रहा हो, और कोई उसको बता दे कि भाई डेड सी के पानी के अंदर तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है, अब आसान काम है। उस डेड सी के पानी से अपना इलाज ना करे जा करके, राइट। अब कौन सी चीज इसको रोकेगी, राइट। इसको सिर्फ और सिर्फ इसका ईमान ही रोक सकता है ना, ठीक है। और ईमान अगर नहीं हुआ, नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर एतमाद नहीं हुआ, ठीक है, या उलमा ने ये बातें जो हमें समझाई हैं, ये अगर हमें हमें ये सच्ची नहीं लगती हैं, तो फिर बंदा क्या करेगा, जा करके वहां के पानी से इलाज करेगा अपना, ठीक है। तो ये ईमान की इस तरह से अल्लाह ताला ने आजमाइशें रखी हैं। जी, ये जॉर्डन में है, बल्कि ये जॉर्डन और इसराइल के दरमियान है, ठीक है ना। अगर आप मैप उठा करके देखें ना, तो बिल्कुल जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर जहाँ पे मिलता है ना, तो वहां पर आधा ये जॉर्डन में है, आधा ये इसराइल में है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है, यानी मैप के एतबार से तो छोटा सा है, लेकिन जाहिर है वहां पर जो वो कौम रहती थी, तो उसके एतबार से तो ये बहुत बड़ी बड़ा एरिया है, ठीक है। तो ये है मुतफिकात के जिन बस्तियों को उलट दिया गया। तो फिरौन से तो ये बहुत पहले गुजरी थी ना ये, क्योंकि कौमे लूत अलैहिस्सलाम जो थी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त की बात हो रही है, और फिरौन जिसका तस्करा यहाँ पर है, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन है, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम तो कई नस्लों के बाद दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे, राइट, उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे, फिर उसके बाद इब्राहिम का नाम आता है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, फिर इब्राहिम के बाद किसी कोई और बेटे थे, और कुछ यानी मार्फुल कुरान में एक्चुअली लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी की जनरेशन में थे ये मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो 6-7 नस्लें कम अज कम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान गुजरी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फअसौ रसूल रब्बिहिम फअखदहुम अखदतर राबिया, बस नाफरमानी करी इन्होंने अपने रब के रसूल की, रसूला रब्बिहिम, रब्बिहिम का तर्जुमा होगा अपने रब, तो अपने रब के रसूल की नाफरमानी करी। असौ, आसव का मतलब होता है इन्होंने नाफरमानी करी, जैसे हम कहते हैं ना आसी, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, ठीक है ना, एक नात नात के अल्फाज है ना ये, तो आसी नाफरमानी करने वाले को कहते हैं। फअखदहुम, बस पकड़ लिया उनको, अखदतन राबियतन, एक सख्त पकड़ने, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने जो अजाब भेजे इन सब के ऊपर, तो वो सब क्या थी, अल्लाह ताला की पकड़ थी। इन्ना लम्मा तगल माऊ हमल नाकुम फिल जारिया, इन्ना बेशक हम, लम्मा जब, और तगल माऊ, ठीक है, लम्बा का तर्जुमा जब, तगा ये वही तुगयानी, ठीक है, यानी हद से गुजर जाना, तगा, ठीक है। अलमाऊ पानी को कहते हैं, तो जब पानी अपने हद से गुजर गया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमलना, हमने सवार किया, हमने सवार किया या हमने उठाया, कुम तुमको, ठीक है, हमने सवार किया तुमको, फिल जारिया थी, जारिया कहते हैं कश्ती को, ठीक है। तो अब यहां पर किसका तस्करा हो रहा है, यहां पर कौम नूह के ऊपर जो अजाब आया था उसका तस्करा हो रहा है, ठीक है, कि जब नूह अलैहिस्सलाम के अजाब की क्या तफसील थी, कि नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो तनूर के अंदर रोटी लगा रही थी, यानी कुछ किताबों में इस तरह से वाकया लिखा हुआ है कि तनूर में रोटी लगा रही थी, तो तनूर के नीचे से पानी उबलना शुरू हुआ, पानी निकलना शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि तनूर जो होता है वो एक घड़े की शक्ल में होता है, तो उसके नीचे से पानी उबलना शुरू हुआ, और वो पानी जो है वो देखते ही देखते फैलना शुरू हो गया, और उसने जो है वो सारी चीजों को फिर अपने अंदर समोना शुरू कर दिया, यानी सैलाब आ गया, ठीक है। तो जब ये सैलाब आया, यानी ये अपने हुदूद से पानी जो है वो क्रॉस हो गया, तो फिर क्या हुआ, کہ ہم نے سوار کیا تم کو کشتی پر, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ناؤز مطلب ظاہر ہے وہاں پر ہاتھ تو نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کشتی پر سوار کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے تمام ماننے والوں کو یہ کہو کہ وہ کشتی پر سوار ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو لوگ جو ایمان والے تھے تھوڑے سے تھے, 50 کے قریب, رائٹ, 950 سال تبلیغ کری اور کل کتنے لوگ مسلمان ہوئے, تقریباً 50, ٹھیک ہے. تو یہ 50 کے قریب جو لوگ تھے یہ کشتی کے اوپر سوار ہو گئے. تو یہ اللہ کے حکم سے چونکہ سوار ہوئے نا, ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے اس بات کو مان دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سوار کیا, ٹھیک ہے, حملنا, ہم نے سوار کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے حکم سے وہ سوار ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ حملنا کے ساتھ کم ہے کہ ہم نے تم کو سوار کیا. اب یہ تم جو ہے نا, یہ تو پڑھنے والے جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو سوار کیا. تو بھئی ہم تو کسی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے نا, یہی ہمارے جد امجد ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم سب کے سب جو ہیں وہ انہی میں سے کسی کی اولاد ہیں, رائٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دنیا کے اندر جتنی ہیومن پاپولیشن تھی, وہ ساری ہیومن پاپولیشن اس سیلاب کے اندر ختم ہو گئی. ہیومن پاپولیشن, ٹھیک ہے نا, ساری ختم ہو گئی اور صرف یہ کشتی میں سوار ہونے والے لوگ رہے, باقی اور کوئی بھی باقی نہیں رہا. تو اب جتنے انسان ان کے بعد دنیا کے اندر ہیں وہ سارے انہی کشتی والوں کے اولادیں ہیں. تو چونکہ وہ ہمارے جد امجد تھے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سوار کیا, کیونکہ اگر تمہارے جد امجد سوار نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. تو تمہارا ہونا جو ہے وہ اس سوار ہونے کی وجہ سے ہی ہے جو کہ ہم نے ان کو کیا, ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ حمل ناکم کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے, اسی کو تو تفسیر کہتے ہیں نا, کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہی جو کہ بظاہر تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو سوار کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو نہیں آئے لوگوں کو سوار کرنے کے لیے, لوگ تو خود سوار ہوئے تھے. تو کیا مطلب ہے حمل نا کا, حمل نا کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کم کی ضمیر, اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں تم کو سوار کیا. بھئی مجھے تو, میں تو کسی کشتی میں سوار ہی نہیں ہوا, کوئی طوفان کبھی آیا ہی نہیں جس سے بچنے کے لیے میں سوار ہوا کشتی میں. تو کیا مطلب ہے اس کا, اس کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں, کیونکہ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, ٹھیک ہے, ایکسپلین کرنا, ٹھیک ہے. تو تفسیر کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. اسی وجہ سے نا جو لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ بھی نا لفظی ترجمہ پڑھ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے نا. ان کو بھی کسی نہ کسی درجے میں تفسیر پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. لفظی ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ آیت کلیئر ہے. آخر میں ایک اور آیت بس آج کرنی تھی. حدیث کی کلاس آپ کی نہیں ہو سکی کیونکہ جو ٹیچر ہیں سمیہ, تو ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے, تو وہ بھی کلاس نہیں پڑھا سکیں گے, ٹھیک ہے. تو 12ویں آیت ہے, لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, تاکہ رکھیں اس کو تمہاری یادگاری کی واسطے اور سینت کر رکھے اس کو کان سینت کر رکھنے والا. ماشاء اللہ, یہ تو ترجمہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا, جو انہوں نے شاید 150 سال 200 سال پہلے کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب ہماری زبان میں اس کا کیسے ترجمہ کریں گے؟ لی ایک حرف ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے کہ, یعنی سو دیٹ, انگریزی میں سو دیٹ کہیں گے. نج آلہ, ہم نے ہم بنائے نج آلہ ہا اس کو. یہ ہا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے, پروناؤن, ٹھیک ہے. یہ کس طرف پوائنٹ کر رہا ہے؟ یا تو یہ کشتی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم کشتی کو بنائیں, ٹھیک ہے, یا یہ اس واقعے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب والا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. इन एनी केस मतलब इसका ये है ताकि हम इसको बनाएं, ताकि हम बनाएं इसको, लकुम तुम्हारे लिए, तस्किरा, तस्किरा मतलब कि याद दहानी, यादगारी जो लिखा ना, तो हम कह सकते हैं याद दहानी, तस्किरा, ठीक है ना, एज अ रिमाइंडर, ताकि हम उसको तुम्हारे लिए रिमाइंडर बनाए। वा और तैयहा का मतलब जरा सा मुश्किल है, यानी वाई एक्चुअली वर्ड होता है जिसका मतलब होता है यानी ध्यान रखना, ठीक है, कॉन्शियस होना, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब ये कि और ध्यान रखे इसका, तैयहा ध्यान रखे इसका, सेंध कर रखे, ये जरा मतरूक उर्दू है तो इस वजह से ध्यान रखे, ऐसे आप इसका तर्जुमा कर लें। उजुनुन, उजुनुन तो कान को कहते हैं, ठीक है, उजुन कान को कहते हैं। वाईयतुन, वाईयतुन ध्यान रखने वाला, ठीक है, ध्यान रखने वाली एक्चुअली इसका तर्जुमा होगा, ध्यान रखने वाली। लेकिन यहाँ पे वाली जो है ना वो किसी औरत के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि चूंकि उजुनुन का जो लफ्ज है ये अरबी जुबान में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, मुअन्नस, तो इस वजह से उसके लिए वाईयतुन यानी ध्यान रखने वाली इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वाईयतुन उजुनुन की सिफत है, ठीक है। तो क्या मतलब, जैसे अंग्रेजी में हम कभी कहते हैं ना कि उर्दू में हम कहते हैं ना गौर से सुनो, गौर से सुनो, ठीक है, तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं लेंड ए ईयर, लेंड ए ईयर, ईयर मतलब कान, ठीक है, यानी कान लगा करके सुनो, यानी गौर से सुनो, ठीक है ना। तो अरबी में भी ना इसी तरह से गौर से सुनने सुनने वाले को गोया के कान से मुशाबहत दे दी, ठीक है, कान लगा के सुनने वाला, ठीक है। तो उजुनुन वायन वायतुन का मतलब होगा कि गौर से सुनने वाला कान, गौर से सुनने वाले कान, ठीक है। तो मतलब यहां पर यह है कि ये जो हमने मामला किया ना नूह अलैहिस्सलाम की कौम को इस तरीके से अजाब में तबाह कर देने का, तो इसकी वजह यह थी ताकि आगे आने वाली नस्लों के लिए वो एक एक इबरत बन जाए, एक यादगार बन जाए, याद दहानी बन जाए बल्कि, ठीक है। और जो गौर करने वाले लोग हैं वो इन मामलात के ऊपर गौर करें, तवज्जो से इनके बारे में सोचें कि भाई क्यों अल्लाह ताला ने ऐसे अपने बंदों को तबाह कर दिया, ठीक है ना। तो ये मकसद है इसका, वताया और ध्यान से गौर करे इसके ऊपर, गौर करने वाले कान, ठीक है। एक्चुअली कान गौर तो नहीं करते, कान तो सिर्फ सुनते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर कान सुने ना तो वो जो बात है वो आपके दिमाग में पहुंचेगी नहीं, ठीक है ना। गौर तो दिमाग ने करना होता है ना, लेकिन कानों को अल्लाह ताला ने दिमाग की खिड़की बनाया है, अगर आप खिड़की को बंद कर दें तो फिर कोई चीज एंटर ही नहीं होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इंसान अपने दिल के कानों को बंद कर दे तो उसकी अकल के अंदर कोई चीज दाखिल ही नहीं होगी, जब दाखिल ही नहीं होगी तो फिर अकल उस चीज के ऊपर गौर कैसे करेगी, ठीक है। इसी वजह से ना कान का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि ये अकल की खिड़की होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, अगर किसी को कोई सवाल हो इस तफसीर के मुतालिक, तर्जुमे के मुतालिक, या इवन कोई जनरल भी कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछ सकती हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हमारे पास और मुझे पढ़ना भी नहीं आज की तारीख में। क्यों नहीं जाना चाहिए जहाँ अजाब हुआ हो, आजाब हुआ था। अच्छा, देखें, जहां पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया हो ना, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है, ठीक है, तो अब वहां पर से जो है ना अल्लाह ताला की रहमत के जो असरात होते हैं ना, रहमत के जो असबाब होते हैं, राइट, फरिश्ते, ठीक है, वो फरिश्ते जो है फिर वहां से हटा लिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला की जो रहमत आती है इस दुनिया में, अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्तों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहां पर अजाब आ चुका है, तो अजाब, और अजाब भी कैसा आया, इंतहाई दर्जे वाला अजाब आया ना, इसलिए कि वहां पर मामला बिल्कुल खत्म कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। तो अब वहां पर ना अल्लाह ताला की रहमत वाले फरिश्ते जो हैं उस जगह पर नहीं होते, ठीक है, तो रहमत वाले फरिश्ते जब वहां पर नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली अब वहां पर जहमत वाले शयातीन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई जगह खला नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अगर रहमत वाले फरिश्ते हट जाएंगे किसी जगह से, तो वहां पर शयातीन जो है ना, फिर उनका वहां पर यानी वो होता तसल्लुत होता है, उनकी हुकूमत होती है, ठीक है। तो वहां पर फिर इसी वजह से ना आम अल्फाज में कह देते हैं कि वहां पर नहुसत होती है। नहुसत का जो लफ्ज है ना, उसकी हकीकत यही है कि वहां पर शयातीन का गलबा होता है और रहमत वाले फरिश्ते वहां पर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वहां पर अजाब वाले फरिश्ते अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना एक ईमान वाले को वहां पर जा करके एंजॉय करना, साइट सीइंग करना, राइट, टूरिज्म करना या कोई इस किस्म का काम करना, इससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, ठीक है। तो हदीस मुबारका के अंदर तस्करा भी है कि आप मुसलमानों के साथ किसी कस्बे के ऊपर जा रहे थे, तो रास्ते में जो है वो एक ऐसा मुकाम आया था कि जहाँ पर अल्लाह ताला का अजाब आया था, तो वहां से फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को, यानी गुजरना तो जरूरी था क्योंकि वो इतना बड़ा मुकाम था कि उसको बाईपास करके नहीं गुजर सकते थे, ठीक है। तो अब वहां से ना बहुत तेजी के साथ जो है वो इबरत सोचते हुए वहां से गुजरे थे, ठीक है, यानी अपने जहन के अंदर इबरत का तसव्वुर करते हुए और डरते हुए, अल्लाह से खौफ करते हुए वहां से गुजरने का हुक्म दिया था। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और आप की तालीम है, तो अब अल्लाह जब नबी अलैहिस्सलाम किसी चीज को हमें बता रहे हैं, तो हमारा तो काम है मान लेना उसको, ठीक है। तो बाकी जो तफसील आपको बताइए, वो तो अपनी तरफ से एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के तौर पर बताइए ना, वरना इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। हकीकत तो ये है कि आप ने जिस चीज़ से मना कर दिया तो उस चीज़ से हम मना हो जाए, और जिसका हुक्म दिया तो वो चीज़ कर लें, यही ईमान का तकाज़ा है। और कोई सवाल? ठीक है, तो बस क्विक समरी इसकी क्या हुई कि ये सूरह हाक्का जो है, ये मक्का मुकरमा के दौर की एक सूरत है, जिसके अंदर अल्लाह ताला उस वक्त के मुसलमानों के ईमानियात के ऊपर खास फोकस करके रखते थे, तो उनको क़यामत के वाक़यात और गुजरी हुई कौमों के ऊपर आने वाले अज़ाब का तज़किरा जो है वो कसरत के साथ सुनाया करते थे। तो इस सूरत में भी ऐसा ही है, तो शुरू में क़यामत के दिन का तज़किरा करके फिर अल्लाह ताला ने फिर उन कौमों का तस्करा शुरू कर दिया कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला का अदाब आया था, ताकि सुनने वालों के दिल जो है वो डर जाएं और वो नबी अलैहिस्सलाम की बात फिर वो सुनने के लिए तैयार हो गए। हमने फिर अब यहाँ तक पढ़ा है, अब इसके बाद जो 13वीं आयत है, तो इससे फिर क़यामत के दिन की तफसीलात शुरू होती हैं। इंशाल्लाह तौफीक दी तो अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।